बस रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो विश्वास रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। यात्रा सुखद ही होगी, यात्रा सुखद ही होगी। विश्वास रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। खुशियाँ लुटाता हूँ तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। तुमने मुझे जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। रोशन हो सबके दिल ये, रोशन हो सबके दिल ये आभास रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। जन्नत बने जहाँ ये, जन्नत बने जहाँ ये शुभ भाव रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो विश्वास रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज हमारी मॉर्निंग और पूरे दिवस को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमारे बीच बाप दादा के साथ का प्रत्यक्ष परोक्ष सूक्ष्म और साकार एहसास कराने के लिए परम आदरणीय ललित भाई जी पधारे हैं। नासिक के इस ग्रुप में आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको ड्रामा ने और बाबा ने लास्ट सोफास का वरदान दिया हुआ है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके दिमाग में, बुद्धि में, जिनकी कलम में, हाथों में, जिनकी नजर में, दृष्टि में और जिनके व्यक्तित्व में हमेशा बाबा नवीनता, रचनात्मकता और सरलता दिखाई देती है। आज आप हमारे बीच हैं वो हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विषय तो आप सबको पता पड़ ही गया है, हर वक्त मेरे साथ हो। आपने 1993 से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। 1997 से आप विशेष हेडक्वार्टर की सेवाओं में अपना विशेष योगदान देते आए हो। वर्तमान समय आप सेक्रेटरी मैनेजमेंट कमिटी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, अन्य 7 सोसाइटी एंड फाउंडेशन जो ब्रह्मा कुमारीज की भगिनी संस्थाएं हैं, उनके ट्रस्टी एवं सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं देते हो। जब बिलियन मिनट्स ऑफ गुड विशेष का प्रोजेक्ट चला, आपकी ही बुद्धिमत्ता, आपके ही विजन ने उसको पूरे भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में ईश्वरीय सेवा का माध्यम बनाया। दिव्यांग सेवा की जो विशेष विंग बनी है उसके आप वाइस चेयरमैन हो, और दिव्य नगरी प्रोजेक्ट जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है उसके आप डायरेक्टर भी हो। अहमदाबाद में विशेष हमारे बुजुर्ग भाई बहनों के लिए खुशी राजी जो विशेष सेवाओं का एक नया यज्ञ चल रहा है, आप उसके भी डायरेक्टर हो। बहुत सारी किताबें लिखने का सौभाग्य ड्रामा ने आपको दिया है, कहीं के ऑथर हो, कहीं किताबों के को ऑथर भी हो। न सिर्फ अकाउंट की बात, कनेक्ट वन जो अकाउंट है वो तो आपकी ही बहुत प्योर रचना है, परंतु किताबों की बात है तो वहां हेल्थ की बात हो, डिस्प्यूट मैनेजमेंट की बात हो, उसमें आपने आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी स्टडी भी किया है, काफी कुछ लिखा हुआ भी है, यूथ की बात हो, माना इसलिए मैंने कहा लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा आज हमारे बीच है। तो ऐसे ललित भाई जी को हम न सिर्फ सुनेंगे, अनुभव करेंगे, उन बातों को, उन शब्दों को अपने में समाएंगे, और समाते हुए हम बाबा मेरे साथ हर पल है उसका एहसास करेंगे। जैसे आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, सेवा योजनाओं के द्वारा ये एहसास सबको करा रहे हो, ऐसे हम सब भी, भले हम गृहस्थ में रहते हैं फिर भी हम अपने गृहस्थ को भी भगवान के साथ का एहसास कराने वाला बना सकेंगे। तो चलो सुनेंगे, अनुभव करेंगे, हर वक्त मेरे साथ हो। परम आदरणीय ललित भाई जी,
ओम शांति। बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे हैं हम। मैं अभी नासिक होके आया था पिछले सप्ताह ही। जागृति दीदी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और बहुत आपसे हमने सीखा है। हम सब ने बाबा को पहचाना है, बाबा के बने हैं। भक्ति करते थे तब भगवान को अलग अलग रूपों में देखते थे और भक्ति के कई किस्से भी सुनते थे। विशेष रूप से भागवत बहुत फेमस है। भागवत में क्या बताते हैं? भगवान के साथ के अनुभवों का वर्णन आता है। गीता में ज्ञान आता है, भागवत में चरित्र आता है, कथाएं आती है। जब बाबा ने अपना बनाया और बाबा को पहचाना तो पता चला कि हम तो बिंदी रूप है, बाबा भी बिंदी रूप है। तब क्योंकि साकार शरीर में रहते हुए साकार को, साकार की कल्पना करना या उसको साथ रखना इजी होता है, पर बिंदी रूप बनकर बिंदु को साथ रख के उसका अनुभव करना और वो एक अलग प्रकार का प्रयोग हो जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में भी जब मैं बहुत गीता पढ़ता था तो उसमें एक श्लोक आता है, अनन्यस चिंतयंतो माम ये जना परुपास्ते तेषाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। गीता का यह श्लोक है, तो उसका अर्थ यह है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर होती है, उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूं। ये भगवान गारंटी ले रहे। योग क्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा करना, उसको योग क्षेम वहन करना कहते हैं। तो जब मैंने गीता में यह श्लोक पढ़ा था और इसका अर्थ समझा था तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ी वंडरफुल बात है, हमारी समस्त जवाबदारी भगवान लेने को तैयार है, समस्त जवाबदारी, केवल एक ही शर्त है, अनन्यस चिंतयंतो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा। इनका ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। जिंदगी में कितनी बातें हैं, कितनी मुसीबतें, कितने उतार चढ़ाव, कितनी समस्याएं, चुनौतियां, क्या क्या नहीं होती है, वो सब भगवान लेने को तैयार है, सब कुछ वो करने को तैयार है। एक ही शर्त है केवल कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना। मैंने कहा ये तो सस्ता सौदा है, ये सौदा तो कर लेने का, तो भक्ति में ही मैंने ये कर लिया था सौदा कि मैं आपको याद करूंगा और बाकी सारे कारोबार आपको करने हैं। तो उस समय तो साकार रूप सामने थे देवी देवताओं के अलग अलग, तो उनको याद करते थे। लेकिन जीवन में एक मोड़ भी आया। मेरा बहुत छोटा सा गांव है और हम फिर ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए उदयपुर आ गए थे, राजस्थान में उदयपुर, आपने नाम सुना होगा। संडे को घर जाते थे, तो एक बार जब संडे को घर गए तो हमारी लौकिक माता जी ने हमें कहा कि भाई कोई लड़की वाले आए थे आपकी सगाई के लिए, लेकिन हमने उनको बोल दिया है कि अभी आगे और पढ़ेगा लड़का हमारा, इसलिए अभी हमको नहीं करना है। तो बात तो आई गई हो गई, लेकिन मेरे मन में ये हुआ कि अरे ये तो जीवन में अभी जैसे एक नया मोड़ आ रहा है, एक नया फेज आ रहा है, अभी तक तो स्टूडेंट लाइफ में चल रहे थे, अब तो शादी की बात होने लग गई है। तो मन में विचार चलने लगे, जहां भी घरों में जाते थे मित्रों के यहां तो नजर जाती थी कि गृहस्थ में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारी चीजें लोग कहते हैं भाई, मतलब विचार चलने लगे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इस प्रकार के सब विचार चलने लगे। लोग कहते हैं भाई सदा खुश रहने के लिए शादी करना जरूरी है, हमने देखा खुश तो रहते हैं लेकिन सदा तो नहीं रहते। तो हमने देखा खुश तो होते हैं लेकिन सदा नहीं होते हैं, वो खुशी का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, बर्तन तो बजते हैं। फिर कहते हैं भाई जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए शादी करते हैं, एक दूसरे को बुढ़ापे में मदद करें, वो भी हम देखते थे कि दोनों में से कोई एक तो पहले चला जाता है, बाद में तो एक बचता है, तो जिंदगी भर सदा साथ, दोनों साथ में ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे विचार चलते थे, देखते थे, करते करते हमारा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, हम सीए करने के लिए अहमदाबाद चले गए। तो वहां जहां हमारे समाज का ही हॉस्टल था उसमें हम रहते थे, तो एक भाई के पास गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सी किताबें पड़ी थी, थैले भर भर के रखी थी उसने। तो हमारे पास टाइम था उस समय, तो पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था वो सब स्टोरीज सारी। तभी गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ने को मिली उस समय, सत्य के प्रयोग, आप में से किसी किसी ने पढ़ी होगी। उस कहानी ने मेरे मन में बहुत ही जैसे तूफान खड़ा किया कि एक साधारण व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को हिला सकता है, भगा सकता है, और वो भी कोई हथियार के बिना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने भी निश्चय किया मन में, इतना मैं उससे मोटिवेटेड हुआ, मैंने निश्चय किया कि मुझे जीवन में कुछ विशेष करना है, मैं ऐसे साधारण जीवन नहीं जीऊंगा, मुझे भी जीवन में कुछ विशेष करना है। ये मन में लक्ष्य बना दिया। अब क्या विशेष करना है वो पता नहीं था, पर विशेष करना है। फिर जब वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे तो वो पढ़ते पढ़ते विचार आया कि भगवान का साक्षात्कार ये कि सभी को नहीं होता है, इनफैक्ट साधु संतों को भी नहीं होता है, ये बहुत विशेष बात है भगवान का साक्षात्कार। तो मैं बचपन से जिस भगवान को याद कर रहा हूं, सारी दुनिया भी किसी न किसी रूप में उसको याद कर रही है, वो कहीं तो होगा, कैसा तो होगा, कुछ न कुछ, मुझे एक बार उसका साक्षात्कार करना है। और यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया कि मुझे विशेष क्या करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, और उसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। तो आगे तो सीए कर रहा था मैं तो, लेकिन बैकग्राउंड में ये चल रहा था कि भगवान का साक्षात्कार करना है। मीनवाइल मैं अहमदाबाद से बड़ौदा चला गया था, वहां ट्रेनिंग सीए की ट्रेनिंग के लिए, तो मैं बड़ौदा में था। तो वो शास्त्रों में आता है कि गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं मिलता, भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो गुरु किया, फिर गुरु मंत्र की दीक्षा ली और गुरु मंत्र का जाप करना शुरू किया, भक्ति शुरू किया बहुत रिगोरियसली। देखा साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो एक बार गुरु के आश्रम में 7 दिन कमरे में बंद रह के तपस्या की कि साक्षात्कार हो जावे, नहीं हुआ। घर वाले को सब समाचार मिल जाता था, क्योंकि मैं मेरे रिलेटिव के यहाँ रहता था बड़ौदा में, तो वो समाचार मिल जाता था, तो वो बड़े चिंता करने लगे कि ये कहीं न कहीं भाग नहीं जाए, तो वो शादी के लिए प्रेशर करने लगे। मैंने कहा मैं सीए करूंगा, उसके बाद करूंगा। और जब कुछ भी नहीं हुआ साक्षात्कार, तब तक मैं सीए का एक ग्रुप क्लियर हो गया था और दूसरे का एग्जाम दिया था। फिर मैंने सोचा कि अभी हिमालय में ही जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़ के, तभी साक्षात्कार होगा। घर में रहते सीए पढ़ाई पढ़ते हुए तो साक्षात्कार नहीं होगा। देन आई डिसाइडेड कि मुझे जाना है, मैंने डिसाइड कर लिया। बस वो सेकंड ग्रुप का एग्जाम दिया, कहा अब 5-10 दिन में निकल जाएंगे अपन। उसी समय अहमदाबाद वहां बड़ौदा में मेरी ऑफिस में एक नया भाई आया था जॉब में, सीए था वो भी। तो उसने देखा मेरे पास गीता की बुक मेरे बैग में ही रहती है, मेरे को 10 मिनट भी टाइम मिलता तो मैं एक श्लोक पढ़ लेता था उसका। तो उसने कहा कि आपको गीता का बहुत शौक है? मैंने कहा हाँ। तो क्या आपके घर के पास में गीता पाठशाला है, आप वहां जाओ तो आपको और मजा आएगा। अब मैंने तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं देखा, बहनों को नहीं देखा, नाम भी नहीं सुना ब्रह्मा कुमारीज क्या है। उसने बोला गीता पाठशाला है। मैंने कहा 8-10 दिन में तो अपने को वैसे भी छोड़ के हिमालय जाना ही है, तो तब तक साथ में पढ़ ले, वैसे गीता सबके साथ में पढ़े। तो मैं वो एड्रेस दिया, मैं वहां पहुंच गया अपने डॉक्टर जयंत भाई, दीदी भी जानते होंगे जयंत भाई हैं साकार बाबा के समय के युगल चंपाबेन जयंत भाई। तो उन डॉक्टर थे, उनका घर था। तो गया मैं सवेरे सवेरे, तो एक छोटा कमरा था उसमें 8-10 लोग बैठे थे, वो सामने बैठ के कुछ पढ़ रहे थे, पीछे फोटो था बाबा का। मैंने सोचा इनके गुरुजी हैं, तो साष्टांग प्रणाम किया मैंने और बैठ गया मैं। तो 5-7 मिनट में उनका जो भी सत्संग था वो पूरा हो गया, क्योंकि मैं तो लेट गया था। फिर एक एक करके सब चले गए, तो फिर मैं लास्ट में रुका। मैंने कहा भाई साहब मुझे गीता पढ़ना है, तो यहां मैं आके सबके साथ पढ़ सकता हूँ गीता? तो उन्होंने कहा हाँ आप आके पढ़ सकते हैं, पर आपको पहले 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा कोर्स क्या, मैंने तो कई बार गीता पढ़ी है, मुझे तो याद है गीता पूरी, कोर्स क्या करना? बोले नहीं ये थोड़ा नया ज्ञान है ना, तो आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने सोचा शायद इनको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैंने संस्कृत में 3-4 श्लोक सुनाए गीता को उनको, कि भाई मुझे ध्यान में, मैं मतलब पढ़ा हुआ हूं सब। तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी बात है आपको गीता आती है, पर ये नया ज्ञान है इसलिए आपको 7 दिन का कोर्स करना है। अब कोर्स की तो फीस होती है, हम तो स्टूडेंट, पैसे तो थे नहीं। मैंने कहा कितनी फीस है आपकी? बोले नहीं कोई फीस नहीं, बस आप कल से आओ 8 बजे, 8 से 9 आपको कोर्स कराएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सुन लेते हैं इनकी बात। दूसरे दिन गया मैं, तो उन्होंने कहा देखो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, एक छोटा सा कमरा और विश्वविद्यालय। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कहा कि ये यहाँ जो है ना ये डिग्री दी जाती है, लक्ष्मी नारायण का एक 4 फीट का बड़ा अच्छा सुंदर फोटो उनके उस कमरे में लगा था, सजा धजा बिल्कुल। कहा यहाँ पर ये डिग्री दी जाती है कि जैसे मेडिकल की डिग्री मिलती है, लॉ की डिग्री मिलती है, ऐसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये डिग्री दी जाती है। तुरंत मेरा माथा ठनका। मैंने कहा कि आपके यहाँ हम ये कोर्स करेंगे तो शादी करना कंपलसरी है? वो एकदम सोचने लग गए कि ये क्यों ऐसा पूछा। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो खुद शादीशुदा थे, वो मुझे पता था कि वो युगल सहित रहते थे वहां, और लक्ष्मी नारायण भी शादीशुदा, तो ये यहाँ पे मतलब डिग्री दे रहे हैं, मतलब शादी करना कंपलसरी है? तो कहा नहीं जो आपकी इच्छा हो। मैंने कहा नहीं मुझे क्लियर बताओ, क्योंकि मेरा लक्ष्य था भगवान का साक्षात्कार करना और हिमालय में जा रहा था मैं, तो मैंने अपने गुरु के आश्रम में, क्योंकि जो गुरु शास्त्र पढ़े, गुरु की जो कथाएं सुनी, तो उसमें ये था कि भगवान का साक्षात्कार करना हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से साक्षात्कार होता है। तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, और भक्ति में तो यही था कि शादी के बाद तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने दूसरी प्रतिज्ञा की कि मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगा। तो ये मेरी प्रतिज्ञा थी पहले से ही, और यहां ये लक्ष्मी नारायण बना रहे थे, तो मैंने कहा नहीं आप क्लियर करो कि शादी करना कंपलसरी है क्या। तो उन्होंने कहा कि देखो, डॉक्टर थे ना बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, शादी करना नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आपकी इच्छा हो वो करना, आप खाली कोर्स कर लो। मैंने कहा चलो कोर्स कर लेते हैं, कंपलसरी तो नहीं है कोर्स, 5-7 दिन बाद तो वैसे भी जाना है अपने को। तो मैंने कोर्स शुरू किया, तो पहले दिन आत्मा का, दूसरे दिन परमात्मा का। अब मेरे मन में इतना तूफान उठने लगा, क्योंकि जो मैंने सुना था, जो शास्त्र पढ़े थे और जो कथाएं सुनी थी उसमें कुछ अलग, और ये कुछ अलग बता रहे थे, तो बहुत मन में तूफान उठा कि सच्चाई क्या है। लेकिन इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि हर चीज सीक्वेंस में थी और लॉजिकल थी, कि भाई आत्मा ज्योति बिंदु तो आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु, तो इस प्रकार से हर चीज मुझे वो लॉजिकल लग रही थी, लेकिन मन में बहुत तूफान चल रहा था। मैंने कहा क्या करें, करें कि नहीं करें? फिर सोचा चलो कोई फीस तो ले नहीं रहे हैं, 7 दिन सुन लेते हैं अपना क्या जाता है, अपनी भक्ति तो चालू है। उस समय भी मैं 3:30-4 बजे उठता था, नहा धो के गुरु मंत्र की 21 मालाओं का जाप करना, वो किताब पढ़ना, गीता पढ़ना, वो सब कुछ चल रहा था। मैंने कहा अपनी भक्ति तो चालू ही है, सुन लेते हैं इनका, तो सुनता रहा मैं। 5वें दिन जब सीढ़ी का लेसन हुआ 84 जन्मों की कहानी का, तो ज्ञान एकदम क्लियर हो गया। जैसे बादलों के चले जाने से सूर्य की रोशनी धरती पर आ जाती है, ऐसे ही उस ज्ञान से बिल्कुल सारे बादल, अज्ञान के सारे बादल हट गए, और ज्ञान सूर्य की रोशनी सीधी जैसे आत्मा में समा गई। तो जो मेरे भक्ति का लक्ष्य था कि मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, वो लक्ष्य मुझे इतनी अच्छी तरह से अनुभव हुआ कि जैसे साक्षात भगवान मुझे सदाकाल के लिए मिल गए। साक्षात्कार तो क्या होता है, 5-10 सेकंड का होता है, लेकिन साक्षात परमात्मा सदाकाल के लिए जो मुझे मिल गए, इतना अच्छा मुझे अनुभव हुआ और वो रियलाइजेशन हुआ। मैं बहुत खुश हो गया कि ये मेरी चाहत पूरी हो गई। फिर 2 दिन और कोर्स किया, 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ। फिर 8वें दिन उन्होंने कहा कि आप मुरली क्लास में आना, तो मैं मुरली क्लास में गया, तो मुरली पूरी हुई। फिर उन्होंने मुझे आगे बुलाया, कहा कि अपना परिचय दो आगे बुला के। तो मैंने परिचय, क्योंकि ज्ञान एकदम क्लियर हो चुका था मेरे माइंड में सब कुछ, तो मैंने यही कहा कि ये शरीर का नाम ललित है, अभी CA की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी बाबा जैसे आगे कहेंगे वैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये खास उन्होंने पूछा उस समय कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है अभी। तो चूंकि मुझे बिल्कुल फेथ था इस ज्ञान में अभी, और मैंने पूरा अच्छी तरह समझ लिया था, तो उस विश्वास के साथ, एक नशा था विश्वास था, तो मैंने कहा कि मैं अभी सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ उनका जो सखा है ना, जो सारा दिन उनके साथ रहता है, वो पार्ट मैं प्ले करूंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य, ये मैं करूंगा। बस वो जो मन में डिसाइड किया था, वो लक्ष्य ऐसा फिट हो गया मन में, जो अभी तक भी वही लक्ष्य सामने रहता है कि मैं श्री कृष्ण के साथ बस उनके सखा के रूप में रहूंगा। अब बात तो थी मन की, लक्ष्य तो मन का था, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है। क्योंकि वो लक्ष्य सामने क्लियर था, तो कई बार मैं सोचता था कि श्री कृष्ण ने तो सारी दुनिया की सेवा की तब वो श्री कृष्ण बने, तो मैं तो यहां गीता पाठशाला में क्लास कर रहा हूं। अगर मैं, मुझे कृष्ण का सखा बनना है तो सारी दुनिया की सेवा करूंगा तब तो बन सकूंगा, बाकी कैसे बनूंगा। तो बाबा को कहता था, बाबा मुझे तो बनना है, आपको कैसे बनाना है वो आप जानो, पर मुझे बनना है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं कठपुतली हूं, आप जैसे नचाएंगे मैं नाचूंगा, लेकिन मुझे बनना है, आप करो कुछ भी करो। तो बाबा ने मुझे, देखो हमारे जीवन में अगर लक्ष्य क्लियर होता है तो कैसे परमात्मा, प्रकृति, वातावरण, परिवार, आत्माएं सब कैसे मदद करती है, उसका मैं प्रैक्टिकल जब वो चित्र देखता हूं तो, कि बाबा ने पाठशाला से सब सेंटर, फिर सेंटर, फिर सब जोन, फिर जोन में सेवा करा के मधुबन में लाके बिठा दिया, तो मधुबन का सेवाधारी बना दिया। और मधुबन में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा दी। हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जहां पूरे भारत भर से बहने अकाउंट चेक कराने आती थी, यहाँ पांडव भवन में ही चलता था, यही मीटिंग होती थी, उसके ऊपर अकाउंट डिपार्टमेंट है, वहां हम बैठते थे, तो बहने आके अकाउंट चेक कराती थी। मुझे इतना नशा चढ़ता था, क्योंकि भक्ति बहुत की थी मैंने, उनका भक्ति में देवियों के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ पैदल जाते हैं, कितना भूखा प्यासा रखते हैं, कितना व्रत उपवास करते हैं, कितना करते हैं, तब कहीं देवियों के, और वो भी आप मंदिर में जाओ, वैष्णो देवी जाओ, तो 5 सेकंड में, 3 सेकंड में धक्का देके आगे खिसका देंगे, इतना ही होता था। और यहां पूरे भारत भर से देवियां दर्शन देने के लिए मेरे सामने आ रही है और मुझे दर्शन दे रही है, और मेरे सामने बैठते, आधा आधा एक एक घंटा मेरे सामने बैठते थे और योग करते थे। वो योग इसलिए करते थे कि मुझे गलती नहीं दिखाई दे, ऑडिट जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे दृष्टि तो मिलती थी। तो इतना नशा चढ़ता था कि देखो देवियां सब दर्शन देने के लिए यहां आ रही है। तो ऐसे ये यात्रा शुरू हुई। अभी परिवार वालों का तो विरोध बढ़ता गया, जब उनको पता लगा कि ये कोई ब्रह्मा कुमारी में जाता है, क्योंकि घर में भी किसी ने सुना नहीं था, गांव में तो कुछ था नहीं ऐसा, तो वो रिलेटिव से पता चला कि ये कोई ब्रह्मा कुमारी में जाना शुरू किया है, तो उन्होंने फिर पता लगाया कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, तो उनको नेगेटिव सुनने को मिला कि कि आपके लड़के को ले जाएंगे, ये करेंगे, ऐसा सब, तो उन्होंने और प्रेशर बढ़ा दिया शादी के लिए सब। मैंने यही कह रखा, मैं पहले सीए करूंगा उसके बाद देखूंगा। तभी फिर मैंने कहा सीए क्यों करने का, अभी मैं तो सन्यासी बन रहा था वैसे भी, अब तो स्वयं भगवान मिल गए हैं, अब मुझे क्यों पढ़ाई करने की। तो मैंने दीदी को कहा, मैंने कहा दीदी अभी मैं फिर बड़ौदा से अहमदाबाद शिफ्ट हो गया था, जॉब ज्वाइन कर ली थी अहमदाबाद में, तो मैं अहमदाबाद आ गया था। तो मैंने कहा दीदी अभी मुझे पढ़ना नहीं है, चंद्रिका दीदी महादेव नगर अहमदाबाद, मैंने कहा दीदी पढ़ना नहीं है, मुझे तो बाबा की सेवा में लगना है। तो दीदी ने कहा कि आपको सेवा ही करनी है। मैंने कहा हाँ। तो कि देखो जनरल सेवा तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो सीए की सेवा है ना वो सीए ही कर सकता है, और आपके दो ग्रुप तो क्लियर हो चुके हैं, दो ही बाकी है, तो जरूर बाबा कुछ करवाना चाहता है। आप ऐसा करो डिग्री ले लो पढ़ाई करके, आप ये नहीं सोचो टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन सेवा में ही टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ऐसा सोच के आप जो है डिग्री ले लो और ये करो सेवा, बाबा सेवा कराएगा। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। मैं ज्ञान में आया तब से दो स्थूल बातों का मैंने खास ध्यान रखा, वो मेरे मन में बड़ी पक्की थी और मैं वो ही करता था। पहला ये था कि जो भी कोई भी बात आती है सामने तो दीदी को बताने का और दीदी की राय सलाह लेने का, और जो दीदी कहे वो करने, जो निमित बहन है वो निमित बहन जो कहे वो करने का। निमित बहन कहे या तेल का डिब्बा गिरा दो तो गिरा देने का, सोचना नहीं, निमित ने जो बोला वो कर देने का। उसमें क्या है हम बच जाते हैं, भाई बाबा ने निमित बनाया बहनों को, अभी बहनों ने जो आदेश दिया मतलब बाबा ने आदेश दिया, अब जो अच्छा हुआ बुरा हुआ बाबा जाने वो जाने, हम तो फ्री हो गए। तो मैं उनको पूछ के कर लेता था। और दूसरा कि कोई भी कुछ भी काम सौंपे, लौकिक अलौकिक, ऑफिस, घर, मित्र संबंधी कोई भी, तो जाके बाबा को बोल देने का कि बाबा ये काम है, क्योंकि उसको करना है जवाबदारी। सौदा तो हो गया था, अनन्यस चिंतयन्तो मां, मैं आपको याद करूंगा, मेरा काम आपको करना है। तो बाबा के साथ भी एग्रीमेंट साइन कर लिया था मैंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना तो एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो बाबा के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। जब पहचान लिया बाबा को तो उसके बाद बाबा से एग्रीमेंट साइन किया कि बाबा जो आप कहेंगे चाहे मुरली में चाहे निमित्त के द्वारा वो मैं करूंगा, बाकी मेरा छोटा मोटा जो भी हो वो आप कर लेना। ये बाबा से एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो जब दीदी ने कहा कि आप डिग्री ले लो, तो मैं बाबा के रूम में गया और बाबा को कहा बाबा दीदी कह रहे हैं डिग्री लेने के लिए, मुझे तो पद पे ऐसा पोजीशन कुछ चाहिए नहीं, अगर आपको इस डिग्री से कोई सेवा लेनी हो तो आप डिग्री दिला देना, मैं पढ़ने की मेहनत नहीं करूंगा, आप डिग्री दिला देना। और बाबा से ये नहीं कि बाबा की ट्रांसलाइट लगी हुई है और बाबा से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे घर में पिताजी बैठे हैं तो पिताजी से कैसे बात करते हैं, कैसे बाबा बैठे हैं और बाबा से बात कर रहे हैं, तो वही मैंने वही रहता है मन में भाव कि बाबा को बोल दिया मैंने बस। तो देखो कैसी कमाल बाबा की, जो मैं और मेरा कजिन एक साथ में रह के अहमदाबाद में किराए के कमरे में हम पढ़ते थे और मैं जॉब भी करता था साथ में, तो मैं अमृत वेला फिर मुरली क्लास फिर सेवाएं भी करना, फिर जॉब से आता रात को, फिर पढ़ते भोजन भी खुद बनाना अपना, फिर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, सो जाता, किताब साइड में गिर जाती, ऐसे मेरी पढ़ाई होती थी। तो मेरा कजिन बोले ललित मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, तू सीए में पास नहीं हो सकता, क्योंकि 5-7% रिजल्ट रहता है। बोले मैं 12-14 घंटा बैठ के यहाँ नोट्स बनाता हूँ पढ़ता हूँ सब, तू तो आता है सोया सोया पढ़ता है नींद आ जाती, ऐसे कैसे सीए होगा। मैंने कहा देखो भगवान को जो मंजूर है वो, हम हर 6 महीना में एग्जाम होती है सीए की, तो मैं एक एग्जाम दिया पास हो गया, फिर 6 महीने बाद दूसरा एग्जाम दिया पास हो गया, तो 2 एग्जाम में मैं तो पास हो गया। मेरे बाद 6 बार उसने और एग्जाम दी, 3 साल उसका और लगा तब उसका सीए क्लियर हुआ। तो मैंने बाबा को थैंक्स दिया कि बाबा कमाल है आपकी जो आपने सीए बना दिया। तो बाबा ने सीए बना दिया। अब सीए बना दिया तो घर वालों का प्रेशर और बढ़ गया मैरिज के लिए, क्योंकि यही बहाना था मेरे पास कि भाई सीए होगा तब मैं कर लूंगा। अब उन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया। अब फिर मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो मैंने दूसरा बहाना शुरू किया। मैंने कहा ऐसी कोई लड़की मिल जाएगी ना पवित्र जीवन जीने वाली तो मैं कर लूंगा। और मैं ये बहाना ऐसे लिए बनाया क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं वहां भाइयों को भी सन्यासी बनने का वो अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा जब भाइयों को भी अलाउ नहीं है तो बहनों के लिए तो कोई सवाल ही नहीं, तो हमारे समाज में तो ऐसी कोई लड़की होगी नहीं, तो मैं बच जाऊंगा। तो मैंने ये बहाना बना दिया कि ऐसा मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, तो मतलब ऐसा कोई होगा लड़की तो कर लेंगे। अब वो बहुत प्रयास करने लगे। एक बार मैं गांव गया तो मुझे कहा कि चलो एक जगह जाना है, बताया नहीं कहाँ जाना है, एक जगह जाना है। कहा चलो, तो ले गए तो मुझे पता चला कि हमारे जो समाज के गुरु थे उनके वहां वो ले गए मुझे, उनका कहीं सत्संग चल रहा था वहां। तो उस समय शाम के 4-5 बजे थे, सत्संग दिन का पूरा हो गया था और शाम का बाद में होना था, तो उनके कमरे में थे। तो मुझे लेके गए, कहा कि फिर जो रिलेटिव अंदर लेके गए तो सबने प्रणाम किया, मैंने भी हाथ जोड़ा। वो यहाँ सामने बैठे थे, नीचे बैठ गए, वो अनारदाना खा रहे थे कटोरी से चम्मच से लेके। तो वो रिलेटिव ने कहा ये फलाने गांव से आए हैं, ये लड़के ने सीए किया है लेकिन शादी नहीं कर रहा है, तो माँ बाप बहुत परेशान है, तो आप कुछ कहो इनको। तो वो गुरु ने मुझे पूछा कि क्या नाम है, तो मैंने कहा शरीर का नाम ललित है। जैसे ही मैंने कहा शरीर का नाम ललित है, उन्होंने कटोरी नीचे रख दी वहां, क्योंकि आज दिन तक ये जवाब तो किसी ने दिया ही नहीं था उनको, तो उन्होंने कटोरी नीचे रख दी। फिर कहा कि आत्मा का क्या नाम है, मैंने कहा गुणवाचक कुछ भी कह दीजिए, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। कि क्या करते हो, मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास करता हूं। जैसे ही मैंने कहा उनकी आंखों में चमक आ गई, बोले ब्रह्मा कुमारीज में बहुत अच्छा है, आप लोगों की तो तपस्या बहुत अच्छा है, राजयोग का तो बहुत ही अच्छा है और आप लोगों का जीवन भी बहुत अच्छा है। मेरी आबू रोड में मेरी भी भागवत की कथा थी तो प्रकाशमणि दादी जी आए थे, मुझे शॉल पहना के मेरा अभिनंदन किया, आप लोगों की तो तपस्या बहुत अच्छी, मेरी बहुत महिमा करने लगे वो गुरुजी। पिताजी सोचे ये ट्रेन कोई दूसरे ही ट्रैक पे जा रही है, तो पिताजी ने कहा कि ये शादी नहीं कर रहा है, घर में सबसे बड़ा है, मेरे से छोटी 2 बहन है और 1 छोटा भाई, हम 4 भाई बहन है, तो क्या ये सबसे बड़ा ये है और शादी नहीं कर रहा है, समाज में लोग इधर उधर कहते हैं, बातें करते हैं, ये आप इसको कुछ कहो। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ कि इसमें कितने अवगुण हैं, पिताजी को पूछा। तो पिताजी ने कहा नहीं अवगुण तो नहीं है, क्योंकि मैंने शिकायत का कोई मौका दिया ही नहीं था, ये केवल एक ही बात उनकी नहीं मानता था मैं, बाकी हर चीज मानता था, सेवा करता था, घर का सब काम करता था, तो यही नहीं मानता था। तो कहा कि नहीं अवगुण तो नहीं है, कि अच्छा इसके कितने दोस्तों में इसके जितने गुण है। तो पिताजी ने कहा कि गुण तो बहुत है इसमें। फिर कहा देखो आप बहुत भाग्यशाली हो, माता पिता को बोला वो गुरुजी ने कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके घर में योगी बच्चे ने जन्म लिया है फिर भी घर में रह के सेवा कर रहा है, घर में रह के सेवा कर रहा है, नहीं तो योगी तो उड़ते पंछी होते हैं, ये भाग जाता तो आप क्या करते, आप क्या कर लेते, ये घर छोड़ के चला जाता तो, पर ये घर में रह के सेवा कर रहा है आपकी, आप कितने भाग्यशाली हो, ऐसे उनको समझाया पिताजी को। फिर एक और बात कही, कहा कि मैं घर से भाग के आया हूं, गुरुजी ने बोला कि मैं घर से भाग के आया हूं और आप लोग मेरी पूजा कर रहे हो, कि आप लोग मेरी पूजा करते हो, तो ये तो आपका घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है, इसलिए आप निश्चिंत रहो। फिर मुझे कहा आज यहां रुकोगे आप, रात को आज रुकेंगे, मैंने कहा भले रुक जाएंगे। पिताजी ने बोला नहीं नहीं बहुत जरूरी काम था, हम तो बस खाली आपसे मिलने, वो सोचे कहीं यहीं नहीं रह जाए, तो मुझे फिर वहां से ले गए। तो उनका विरोध बहुत, मतलब 7 साल मेरा बांधेला का पार्ट रहा था, बहनों का बांधेलियों का पार्ट होता है, मेरा 7 साल तक बांधेला का पार्ट रहा था। एक बार घर गया तो पिताजी ने बोला अभी क्या करना है बोल, मैंने कहा बस पवित्र जीवन जिएंगे, आपकी सेवा करेंगे, बस सभा लगी थी। मैं जब गांव जाता था ना तो गांव में पता तो लग ही जाता था, छोटा सा गांव होता है तो ललित आया हुआ है, तो शाम को घर पे सभा लग जाती थी, मेरा ज्ञान सुनने के लिए नहीं, मुझे सुनाने के लिए। ललित शादी कर ले, राम ने भी शादी की थी, कृष्ण ने भी शादी की थी, सब शंकर ने भी, सब गृहस्थ में ही सबका पालन होता है, ये होता है, वो समझाने के लिए मुझे लग जाती थी सभा। मैं भी सुनता रहता था, मुस्कुराता रहता था सब। तो जब पिताजी ने कहा क्या करना है, मैंने कहा बस पवित्र जीवन जिएंगे और आज के बाद गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा, गांव में पैर नहीं रखना चाहिए। तो इतना उनको गुस्सा आया मेरे पर, करते थे, मैं हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था और काम करता रहता था। शादी वाले वो लड़कियों वाले तो बहुत आ रहे थे रिश्ते, क्योंकि गांव में पहला सीए मैं था। उस छोटे से गांव में अभी करीब 35 सीए है, पर फर्स्ट सीए बाबा ने मुझे बनाया था उस गांव में। तो घर वाले भी परेशान थे सब, लेकिन मेरे पास कोई भी आता मैं यही कहता मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूं, पवित्र जीवन जीना है, ये है, वो लोग चले जाते, कोई रिश्ते वाले फिर रुकते नहीं थे। एक बार ऐसे ही अहमदाबाद में मैं था तो घर पे एक भाई आया ऐसे ही उनकी लड़की के लिए, मैंने यही बात कही तो वो चला गया था, बात आई गई हो गई। फिर मेरे एक रिलेटिव के यहाँ बड़ा प्रोग्राम था, तो हम सब परिवार वाले लौकिक वाले इकट्ठे हुए थे, तो मैं रूम में बैठा था वहां उनके घर में, तो अचानक मेरे रिलेटिव आए, मेरे मामा और जीजा जी आके कहा चलो लड़की देखने जाना है। मैंने कहा कहाँ लड़की देखने जाना है, बोले कि एक भाई आए थे ना अहमदाबाद में तेरे से मिलने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि, तो मैंने कहा वो हाँ बोला उन्होंने, उसकी लड़की ने बोले हाँ तभी तो वो आए हैं कि भाई ऐसा पवित्र जीवन जीने के लिए वो तैयार है, तभी तो वो आए हैं, इसलिए लड़की देखने जाना है। अरे मैं तो फंस गया, मैंने सोचा कि ये तो कभी मौका आएगा ही नहीं, मैं मेरे ही शब्दों में फंस गया था। उन्होंने कहा नहीं चलना ही पड़ेगा, तेरे को जाना ही पड़ेगा। आखिर मेरे को जाना पड़ा, मैं गया उनके साथ। अब गया उनके घर, गए तो वो नाश्ता लेके आए, बैठे, वो लोगों ने किया नाश्ता, मुझे तो कुछ करना नहीं था। फिर उन लोगों ने आपस में बातचीत भी की और फिर 10-15 मिनट आधा घंटा हुआ, फिर कहा अच्छा चलो हम जाते हैं। मैंने कहा ये कहीं मेरी मौन स्वीकृति समझ लेंगे, मैंने कुछ बोला नहीं पूछा नहीं, ये मौन स्वीकृति समझ लेंगे। मैंने कहा मुझे इनसे पर्सनली मिलना है, तो वो बहन को मैं ले गया, वहां गार्डन था बाजू में, तो उनको समझाया पूरा कि कैसे मेरा जीवन जो है, मेरा शुरू से ही सन्यासी का कंसेप्ट था, ये था वो था, फिर ब्रह्मा कुमारीज में आया और ये सब पवित्र जीवन जीना, ऐसा पूरा आधा घंटा उनको सब समझाया। फिर मैंने कहा आप है ना आपके पिताजी को मना कर देना कि लड़का बहुत लंबा है नहीं पसंद है करके मना कर देना आप, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसे करके वहां से निकल गए। रास्ते में वो पूछे रिलेटिव हमारे की क्या हुआ, हाँ बोला ना बोला, मैंने कहा ना ही बोलेगी ना आप लोग जबरदस्ती ऐसे करते हो, ऐसे करके मैंने सोचा बात आई गई हो गई। अभी थोड़े दिन और निकले, मैं ऑफिस में बैठा था अहमदाबाद जॉब कर रहा था, तो वो भाई वापिस आ गया, आके मेरे को बोला कि आपके पिताजी से मिलना है, कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा किस लिए मिलना है, तो कि वो आगे बात करनी है। फिर मैंने कहा आपकी लड़की ने हाँ बोला, तो कि हाँ हाँ बोला तभी तो मैं आया। मैंने कहा मेरे पिताजी तो अभी एक मेले में गए हुए हैं, 5-7 दिन लगेगा, लेकिन आपके जरा घर का नंबर फोन नंबर, उस समय मोबाइल नहीं होता था, मैंने कहा आपके घर का फोन नंबर और वो आपकी लड़की का नाम जरा बताना क्या है। तो मैंने लिया, फिर वो गए, फिर मैंने फोन किया वो बहन को, मैंने कहा कि आपके पिताजी मिलने आए थे, तो कि हाँ वो आने वाले थे। कहा आपने हाँ बोला, तो कि मैंने हाँ बोला। मैंने सोचा पवित्र जीवन मैंने फिर क्लियर बात की, मैंने कहा देखो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत करने की बात थी और इस प्रकार का जीवन पूरा है तपस्या वाला, कि हाँ अच्छा है ना उसमें क्या बुरा है। मैंने कहा मुसीबत ये, तो मैंने कहा देखो आप जल्दी नहीं करो, आप सोच समझ के भी डिसीजन लो, जल्दी नहीं लो डिसीजन सब, ऐसा है तो हम एक बार वापिस मिलते हैं। ऐसा करके मैंने वापिस मिलने का टाइम लिया बड़ौदा में, फिर मैं वापिस मिले, फिर उसको समझाया एक घंटा तक, फिर मैं उस पाठशाला में ले गया जहां मैंने कोर्स किया था, तो वहां जो वो बहन थी उस बहन ने भी उनको बहुत समझाया कि ये ललित तो शुरू से ही जब से हमने इसको देखा है, न इसको खाने का शौक, न पहनने का शौक, न कहीं घूमने का शौक, ये मन से ही सन्यासी है पूरा, इसलिए तू क्या करेगी, इसके तो जीवन का लक्ष्य था कि इसको ऐसा बनना ही था, तेरे तो जीवन का ऐसा कोई लक्ष्य है नहीं है, तू तो अब किस कारण से हाँ बोल रही है, लेकिन तेरे तो ऐसा करके उसको भी बहुत समझाया। फिर मैं उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने गया तो लास्ट में जाते समय वो यही बोली कि मेरे डिसीजन में कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा बाबा, तब मैंने इतना बाबा को याद किया उन दिनों में, वो ज्वाला स्वरूप योग क्या होता है वो मेरे को उस समय पता चला था पूरा। इतना बाबा को याद करूं, बाबा अब मुझे इस मुसीबत में से बचा ले। भक्ति में कहते हैं द्रौपदी की लाज बचाई थी, अब वो कब बचाई नहीं बचाई मुझे नहीं पता, अभी मेरी बचा ले कैसे भी। अब मुझे मैं गलती मेरी थी कि मैंने बहाना लगाया था, अब इस गलती में से छुड़ा मेरे को, आगे से मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी छुड़ा। इतना बाबा को याद करूं। अचानक पिताजी का फोन आया कि नडियाद आ जा, मेरे मामा जी नडियाद रहते लो, कि वहां आ जा, फाइनल बात करनी है। अब मेरा कजिन जो मेरे साथ रहता था, मैं उसको लेके गया, उसको समझाया, भाई देख तू तो मेरा जीवन जानता है ना, तू कैसे भी मना करवा दे, पर वो तो वो खुद ही चाहता था मेरी शादी हो, तो वो क्यों मना कराएगा। तो बैठे, अब मैं बाबा को इतना याद करूं, बाबा कैसे भी करके बस एक बार इस मुसीबत में से निकाल दे, फिर मैं जिंदगी में कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, सब कुछ तेरा कहा हुआ करूंगा, ये एक बार मुझे इस मुसीबत में से निकाल दे। बहुत याद कर रहा था बाबा को। और मैंने कहा बाबा, जैसे रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने, इन्होंने तपस्या की थी, शिव जी से वर मांगा था, तो कुंभकर्ण जो है वो इंद्रासन मांगने वाला था, तो सब देवताएं घबरा गए थे और जाके ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई ये इंद्रासन ले लेगा तो हमारा क्या होगा। तो ब्रह्मा जी सरस्वती के पास गए कि तुम ऐसा करना, उसकी जीप पर बैठ जाना और दूसरा कुछ बुलवा देना। तो जब शिव जी ने उसको कहा, कुंभकर्ण को, कि मांग तेरे को क्या वर चाहिए, तो कुंभकर्ण ने निंद्रासन मांग लिया इंद्रासन की जगह, इसलिए 6 मास सोया रहता था। मैंने कहा बाबा कुछ चमत्कार कर दे, चमत्कार तो तू कर ही सकता है, तो कुछ कर दे, तू मेरे साथ है ना, तो इतना तो कर। इतना बाबा को याद करूं। अब वहां मामा के घर में सभा लग गई थी, सब बैठे थे, पिताजी तो बहुत गुस्सा करते ही थे मेरे से, तो मेरे वो कजिन को पूछा कि आखिर बोल इसकी इच्छा क्या है। तो कजिन ने कहा कि देखो ये तो इसने तो पहले से कहा है कि ऐसी कोई लड़की मिलेगी तो ये शादी कर लेगा, तो ये तो इसके शब्दों से बंधा हुआ है। बाकी लड़की भी हाँ बोल रही है, अब आपकी क्या इच्छा है, आप निर्णय लो, जो निर्णय लेना है वो। मैं बाबा को याद करूं, उसके पहले एक घटना हो गई थी, जब वो मेरे रिलेटिव के यहाँ प्रोग्राम था ना, वहां गए थे हम, तो उसके एक रात पहले वो फिर मुझे, हमारी माता जी और मामी जी और वो कहे एक जगह चलना है चलो, अब मेरे को बताते नहीं थे कहाँ जाना है, बस एक जगह चलना है चलो, कहा चलो। तो गए, रात का समय था, तो एक हमारे रिलेटिव के घर ही गए, मैं समझ गया ये क्यों लाए हैं, वो हमारे माता जी के मौसा जी का घर था, तो उनकी कुछ समय पहले डेथ हुई थी और वो उनके बहू के शरीर में वो आते थे, ऐसे पूर्वज आते हैं ना किसी किसी परिवार में ऐसे, तो वो उनके बहू के शरीर में आते थे, लेकिन पावरफुल थे, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसको कुछ कहते थे तो उनका काम हो जाता था, किसी का क्या हो जाता था, किसी का क्या हो जाता था, बहुत विश्वास था सबका कि ये जो कहेंगे तो हो जाएगा, तो वो उनके वहां ले गए। तो मैं समझ गया कि ये वो उसको बुलाने वाले हैं आज, उस आत्मा को। तो मैंने भी बाबा को याद किया, बाबा वो आत्मा आएगी ना, आप आ जाना, अब आपको ही संभालना है, मैं तो दिखाई नहीं देती वो आत्मा, तो आप परमात्मा हो तो आपको संभालना है कि उसको कैसे क्या करना है, मैं तो बैठा रहूंगा, आपको याद करूंगा, आपको जो करना है करना। तो अगरबत्ती लगाई और उस आत्मा को बुलाया तो आई आत्मा। तो हमारे रिलेटिव ने कहा कि ये ललित अपना जो है शादी नहीं कर रहा है, परेशान है, सब समाज में सब लोग बातें करते हैं, ये करते हैं, आप इसका कुछ करो कि इसकी शादी हो जावे। तो ये कोई ब्रह्मा कुमारी में जाता है ऐसा सब। तो वो आत्मा ने कहा कि देखो ये जहां जाता है ना वो भगवान का काम है, बहुत अच्छा है, आप इसको रोकना नहीं, ये जहां जाता है। तो कहा ठीक है, लेकिन इसका शादी का तो कुछ करो। तो कहा देखो मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं इसका मन बदलने का प्रयास करूंगा। फिर मुझे 5-6 दाने गेहूं के दिए, ये 6 महीने तक अपने पास रखना, इसमें से एक भी दाना गिरा दिया ना तो बीमार कर दूंगा, अपने पास रखना, और उनको बोला मैं गारंटी नहीं लेता हूं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनका मन बदले इसका। मैं दाने तो मैंने रख लिए थे, तो रात को तो वो बात हुई और दूसरे दिन ही वो देखने की बात और सब हुई, तो घर वाले तो बड़े खुश थे कि वो उन्होंने कहा है तो वो मन बदल देंगे इसका सब। तो वो लास्ट मोमेंट था, पिताजी ने पूछा था वहां घर में सभा लगी थी, तो उस फ्रेंड ने कहा कि भाई इसका तो इस शब्दों से बंधा हुआ है लड़की, हाँ अब आपका निर्णय है। तो पिताजी अचानक बोले, जब इसको ऐसा ही जीवन जीना है तो ये अकेला ही बहुत है, दो को लाके क्या करेंगे। मैंने कहा वाह 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 वाह, थैंक यू कि आपने मुझे इस पेपर में से निकाल दिया, उनके मुंह से ही वो शब्द बुलवा दिया। तो मेरा वो पेपर वहां पर पूरा, उसके बाद वो फाइल कभी नहीं खुली, वो फाइल सदा के लिए बंद हो गई। लेकिन पिताजी को गुस्सा तो था ही मेरे पर, तो मेरे से छोटी बहन की शादी तो उन्होंने करवा दी थी, उससे छोटी थी उसके लिए वो लड़का ढूंढ रहे थे, तो कहीं सेट नहीं हो रहा था। तो मैं एक बार गांव गया तो मेरे को बोले तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता, गुस्सा किया बहुत, इसलिए इसके लिए लड़का ढूंढना और इसके शादी का खर्चा करना वो सब तेरे ऊपर है। मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा के रूम में गया, सेंटर पर आया, जब बाबा को जाके बोला बाबा पिताजी ने एक काम सौंपा है, लड़का ढूंढना है और खर्चा करना है सब, बोल के मैं निश्चिंत हो जाता था, फिर मैं नहीं सोचता था। उसी समय मुझे दीदी ने कहा कि आबू से लेटर आया है फर्स्ट टाइम कि आपको 15 दिन अकाउंट सेवा में बुलाया है। मैंने कहा दीदी मैं जाऊंगा। फिर मैं ऑफिस गया और बॉस को बोला मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने रिजाइन कर दिया, मैंने कहा ये रेजिग्नेशन लेटर, आपकी नौकरी छोड़ रहा हूं मैं। बोले पागल हो गए, इतनी अच्छी नौकरी कहां मिलेगी। मैंने कहा मुझे मिल जाएगी, मुझे भगवान की सेवा में जाना है, 15 दिन मुझे बुलाया मुझे जाना है। मैं नौकरी छोड़ दिया और मधुवन आ गया, 15 दिन 20 दिन यहां सेवा की, वापिस घर गया, वहां अहमदाबाद गया। तो अब जॉब भी नहीं थी, किराए का मकान, किराया चुकाना, घर का खर्चा और जॉब भी चली गई, और बहन की शादी का खर्चा वो करना, इकट्ठा करना था। पर मैं निश्चिंत था कि भगवान का काम है, भगवान जाने, वो कराएगा, वो हर वक्त मेरे साथ है, उसको जो कराना है वो करावे। तो मैंने दीदी को कहा दीदी अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं अहमदाबाद में ही जॉब ज्वाइन करूं, या कहीं विदेश में जॉब करूं, या अपना खुद का CA का ऑफिस करूं, आप जो कहें मैं करूंगा। दीदी ने कहा अपना खुद का CA का ऑफिस कर लो। मैंने कहा ठीक है। मन में सोचा दीदी ने कह तो दिया लेकिन ऑफिस किराए पर लेना, उसकी डिपॉजिट, फर्नीचर बनाना, वो सब खर्चा के पैसे कहाँ है, और दूसरा कोई क्लाइंट कौन है, मैं तो नया था अहमदाबाद में, तो ऑडिट किसकी करूंगा मैं। पर मैंने कहा बाबा ने, दीदी ने बोला, मतलब बाबा ने बोला मुझे यही करना है। तो जिस कमरे में रहता था उसी के एड्रेस पर विजिटिंग कार्ड छपा के बांट दिए कि भाई मैंने ऑफिस शुरू किया है। आप सोचो 1000 हाथ वाला कैसे मदद करता है। 20 दिन में, अभी मैंने ये शुरू ही किया था, 20 दिन में मुझे इतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर होता था, उतना काम 20 दिन में मिल गया। मैंने कहा वाह बाबा कमाल है आपकी। तो थोड़े ही 10 दिन और निकला और अहमदाबाद का एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास आया, कहा ललित भाई आज मेरी ऑफिस आना आप 11 बजे। मैं गया, कहा कि देखो मेरी उम्र हो गई है, काम बहुत बढ़ गया है, आप पार्टनर बन जाओ मेरे, तो मैं इतना परसेंट शेयर दूंगा। मैंने कहा इतनी पुरानी फर्म है उसमें पार्टनर बनने के लिए पहले गुडविल का पैसा देना पड़ता है तब पार्टनर बनाते हैं। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मैं कैसे पार्टनर बन सकता हूँ। कि नहीं नहीं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप बैठो ऑडिट शुरू करो, आपको मैं इतना परसेंट शेयर दे दूंगा। मैंने कहा मैं शाम को बताऊंगा आपको। मैं फिर दीदी के पास गया, मैंने कहा दीदी ऐसी ऑफर है क्या करें। दीदी ने कहा आप ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर ली पार्टनरशिप। जिस महीने में मैंने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन की उस महीने में वहां एक नई इनकम शुरू हुई, और उस नई इनकम में मेरा जो शेयर आता था वो भी बहुत अच्छी रकम आती थी हर महीने। तो 8-9 महीने में ही बहन की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए था वो इकट्ठा हो गया। मैं 5 साल जॉब करता तो भी वो पैसा इकट्ठा नहीं होता, तो कैसे बाबा ने जॉब छुड़वाई और 8-9 महीने में पैसा इकट्ठा हो गया। बहुत अच्छी शादी हो गई। पिताजी सोचे इसकी नौकरी भी छूट गई, इसके पास पैसे कहां से आए। क्योंकि हजार हाथ वाला उनको तो दिखाई नहीं देता है, वो तो हमारे साथ है तो हमको पता है। तो शादी पूरी हुई, सब घर में बैठे थे, तो वो लड़के के पिताजी ने हमारे पिताजी को कहा कि देखो अपना कोई खास परिचय नहीं था, फिर भी आपकी लड़की को हम ले जा रहे हैं, आपको पता है क्यों ले जा रहे हैं? तो पिताजी ने बताया, बताइए क्यों? तो कि जब पहली बार ललित जी और आप हमारे घर आए थे लड़का देखने के लिए, और मुझे ललित जी का जो परिचय मिला, तो मुझे लगा कि जिस घर में इतना धार्मिक और अच्छे स्वभाव वाला भाई है, उसकी बहन कितनी अच्छी होगी जो हमारे घर को संभालेगी, इसलिए हम ले जा रहे हैं। पिताजी ने मुझे क्या ताना कसा था कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो इसलिए तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं करता, और बाबा ने उनको रिप्लाई क्या दिया, ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं इसलिए इसकी बहन को हम ले जा रहे हैं। ये भगवान के काम करने का तरीका होता है। हमारे सामने कोई भी समस्या हो, कोई भी चुनौती हो, कोई भी परेशानी हो, हम सोचते हैं अच्छा हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, या ऐसा कर, हम ABCD सॉल्यूशन सोचते हैं अपने मन में, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। लेकिन जब हम भगवान को वो सौंप देते हैं, तब भगवान जो सॉल्यूशन लाता है वो ई सॉल्यूशन लेके आता है, उन चारों से अलग, वो इतना सरल और इतना अच्छा कि हम कल्पना करते हैं, अच्छा इतना अच्छा, कमाल है। मैं जिस घर में कमरे में किराए पर रहता था वो बाबा के एक बच्चे का था, चतुर भाई, तो नीचे वो रहते थे और ऊपर में किराए उनकी बहन का हिस्सा था, वो मुझे किराए पर दिया हुआ था। तो एक दिन मुझे बोले, ललित भाई वो बहन के पोते का कॉलेज में एडमिशन हो गया है, 15 दिन बाद वो अपना सब सामान लेके आएगा, तो आपको कमरा चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर बाबा के रूम में गया, अपना तो एक ही, बाबा को जाके बोला, बाबा कमरा चेंज करना है आप देख लेना। मैं कहीं कमरा देखने नहीं गया, उन्होंने 2-3 बताए अलग अलग जगह पर, वो पसंद नहीं आए। लास्ट दिन 13 दिन पूरा हो गया था, वो भाई मेरे को बोले, अच्छा ललित भाई अगर नहीं मिल रहा हो तो आप थोड़े नीचे मेरे साथ रह जाना। इनका देखते हैं। जब मैं 14वें दिन सवेरे मुरली क्लास करके नीचे उतर रहा था सेंटर पर, तो दीदी ने कहा, ललित भाई आपको कमरा चेंज करना है। मैंने कहा जी दीदी। बोले कब करना है? मैंने कहा आज ही करना है। कि कहीं देखा है? मैंने कहा नहीं देखा तो नहीं है। तो हंसने लगे कि कमरा चेंज करना है, आज ही करना है, देखा भी नहीं है और चिंता भी नहीं है। तो हंसते हंसते वो अंदर गए। अंदर जाके एक 8-10 चाबियां वाला एक कीचेन लाके मेरे हाथ पे रखा, जिसमें 8-10 चाबियां थी। कहा ये 8-10 कमरे हैं और एक बंगला है, पूरा खाली पड़ा है, ये आप संभालो। इलाके मुझे दिया। मेरे को कितना चाहिए था? एक कमरा। बाबा ने क्या किया? 8-10 कमरे, अपना हॉस्टल खाली पड़ा था तो मुझे दे दिया। कब दिया? लास्ट दिन। बाबा चाहता तो पहले दिन भी दिला सकता था, लेकिन लास्ट दिन क्यों दिलाया? निश्चय की परीक्षा थी, विश्वास की परीक्षा थी कि विश्वास कितना है, क्योंकि सारा खेल विश्वास पर ही है कि आपको कितना विश्वास है। एक गांव में लास्ट कथा सुनाता हूं, टाइम हो गया है, क्योंकि ये तो भागवत है, 2 दिन तक भी सुनाऊं तो आप नहीं हिलेंगे, इतनी मेरे पास इस 34 वर्षों की कहानियां है, हर पल उसका साथ लिया है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे लौकिक है, चाहे अलौकिक है, चाहे कुछ भी है, हर जगह मैं तो उसी पर डाल देता हूं कि तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे को याद कर रहा हूं, तेरे को जो करना है कर। और ऐसा वंडरफुल होता है कि क्या कहूं मैं आपको। तो एक गांव में एक महाराज कथा सुना रहे थे, भगवान सबकी मदद करता है, प्रहलाद को भी बचा लिया, अरे आपको नदी क्रॉस करनी है उसका नाम लो तो नदी रास्ता दे देगी, ऐसे ऐसी बहुत अच्छी कथाएं की। फिर कथा पूरी हुई, सब अपने घर गए, शाम को वो नदी पे नहाने जा रहे थे तो देखा एक व्यक्ति दूर पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है। उनको बड़ा कुतूहल हुआ वो संत जी को, वो नजदीक गए तो देखा नीचे एक तलवार खड़ी है धरती पर और एक व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है उतर रहा है। कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो? कि महाराज आप भूल गए। तो क्या भूल गए? तो आज आपने कथा में बताया था ना कि अगर आप पेड़ से गिरोगे नीचे तलवार होगी तो भी भगवान बचा लेगा। तो महाराज को याद आया कि हाँ मैंने बताया तो था कथा में, तो कि बस मैं वही प्रयोग कर रहा हूं। तो क्या अच्छा प्रयोग कर रहे हो तो फिर आप ऊपर से तलवार पर गिरते क्यों नहीं हो, नीचे उतरते क्यों हो वापिस। तो वो बोला मैं ऊपर जाता हूं, ऊपर से तलवार देखता हूं तो गिरने के लिए ही मैं जाता हूं, लेकिन जब तलवार देखता हूं तो विचार चलता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। संत ने कहा वो नहीं आएगा, जहां संशय है वहां वो नहीं है, लेकिन जहां निश्चय है वो वहां हाजरा हजूर है। भले हम कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन भगवान सर्वशक्तिवान है, वो हर जगह हर समय हर परिस्थिति में हर प्रकार से हमारी मदद करने के लिए बंधा हुआ है। अव्यक्त वाणी में कितनी बार आपने सुना होता है, ये बोझ का टोकरा क्यों अपने सिर पर रखते हो, मुझे दे दो, यूज मी, मैं तुम्हारी बोझ लेने के लिए आया हूं। तो प्रयोग करके देखो ना, ये प्रयोग करने का समय है, ज्ञान मार्ग प्रयोग करने का समय है। बस मेरी तो यही गुड विशेष है कि आप सबके जीवन भी, मुझे तो नशा रहता है कि भागवत का एक अध्याय मेरे नाम का होगा, पर आप सबके जीवन भी भागवत के अध्याय की तरह ही है, ऐसी मेरी गुड विशेष है। ओम शांति।
ओम शांति। पर्सनल एक्सपीरियंस जब दूसरों की प्रेरणा बन जाता है, वही एक अनुभूति का भाग बन जाता है। आज हम सब ने अनुभव किया, और विशेष जिनके पास छोटा मोटा बंधन है, छोटी मोटी समस्या है, उनको एक बहुत बड़ा हाईवे मिल गया और एक एग्जाम्पल सेट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललित भाई जी। एक और बात है, पहले जो गीत बताया था वो भी आपने लिखा है, हर वक्त मेरे साथ हो, अभी भी जो गीत बजेगा वो आपकी लेखनी की कमाल है। तभी योग भी करेंगे, लेकिन देखो अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ, इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन में साथ देना कहाँ, खुशी राजी कहाँ, और लिखने की कला कहाँ। बाबा का बच्चा बाबा की मदद से जो चाहे वो कला सतयुग में जाने से पहले अपने आप में संगम युग में ही डेवलप कर सकता है। उसका एक एग्जाम्पल ललित भाई जी, चलो बाबा के पास।
यादों के झरोखों ने मुझे योगी बना दिया, नजर में तुझे बसा कर मैंने जग को भुला दिया। तेरा ज्ञान सुना तो लगा, तेरा दीदार हुआ, तेरी को एहसास हुआ। दिव्य चक्षु के वरदानों ने वतन में बिठा दिया, नजर में तुझे बसा कर मैंने जग को भुला दिया। यादों के झरोखों योगी बना दिया, नजर में तुझे बसा कर मैंने जग को बुला। बजती है तुझको देखूं बजती है एक तेरी यादों ने बाबा चेहरा खिला दिया नजर में तुझे बसा कर मैंने जग को भुला दिया यादों के झरोखों ने मुझे योगी बना दिया नजर में तुझे बसा कर मैंने जग को भुला दीवगोनों की खुशबू वाला फूल बनाते हो विश्व गगन के भव्य भाल पर मुझे बिठाते हो यादों की डोली में सजा कर सजनी बना नजर में तुझे बसा कर मैंने जग को भुला दिया यादों के झरोखों ने मुझे योगी बना दिया यादों के झरोखों ने यादों के झरोखों